उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की प्रेम में और अनुग्रह में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन सबका भी जो सुनकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर हमें पत्र लिखते और फोन कॉल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे जो बाइबल की पुस्तकों में से एक है और अब तक हमने इन पुस्तकों का अध्ययन किया है और आज हमारे लिए यह आखिरी समय होगा कि हम इस पुस्तक का अध्ययन करें। तो इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम और दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जिसे अब तक आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इस समय जब हम आपके पवित्र वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, विचार विमर्श करते हैं रेडियो के माध्यम से, प्रभु जी आप हम सब से बोली और बातचीत कीजिए ताकि हम आपकी निकटता में आ सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं या किसी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। आप उन सब की सुधि लीजिए। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर और अय्यूब के बीच वार्तालाप अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु ये दो पद अति ही रोचक हैं। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसके 22 और 23 पद में। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हिम और ओले युद्ध में कैसे काम आएंगे, इसके बारे में अति रोचक व्याख्याएं हैं, परंतु मैं इसमें समय नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं जानता कि नेपोलियन बर्फ से हारा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर दंड में एक ओलावृष्टि भी है। यहां परमेश्वर केवल यही कह रहा है कि उसकी सृष्टि मनुष्य की समझ के परे है, केवल परमेश्वर ही जानता है। अब वह सितारों के बारे में भी चर्चा करता है। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तऋषि के साथियों समेत लिए चल सकता है, क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है। हम आकाश में चमकते सितारों के बारे में क्या जानते हैं? मैं यह तो नहीं जानता, कि प्राचीन युग का मनुष्य इस विषय में कितना ज्ञान रखता था, परंतु स्पष्ट है कि वे बहुत कुछ जानते थे। मिस्र के विद्वान सूर्य की दूरी का सही ज्ञान रखते थे, इसका अर्थ है कि उनका ज्ञान ऊंचाइयों पर था। जी हाँ, क्या आपने परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा जाना है? क्या आप सृष्टि द्वारा वास्तव में परमेश्वर को जान सकते हैं? मेरे विचार में परमेश्वर अय्यूब को स्पष्ट समझा रहा है कि सृष्टि उसकी महानता का वर्णन करती है। मनुष्य सृष्टि के द्वारा परमेश्वर को जान सकता है, परंतु उद्धार नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, अध्याय 38 में परमेश्वर के लिए कहा गया है कि वह सृष्टि द्वारा प्रकट है, और अध्याय 39 में परमेश्वर को सृष्टि का संभालने वाला कहा गया है। यह आज भी उसकी सृष्टि द्वारा उसका प्रगटीकरण है। तो आइए अब हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 39 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हरिणियां बियाती हैं तब क्या तू देखता रहता है? परमेश्वर प्रकृति का परमेश्वर है। आज प्रकृति की घटनाएं इसलिए घटती हैं कि परमेश्वर उन्हें होने देता है। परमेश्वर के बिना प्रकृति मृतक है। न बसंत ऋतु होगी, न ग्रीष्म ऋतु, और न पतझड़, और न ठंड, और न आंधी। जगत की सब गतिविधियां रुक जाएंगी। यदि सृष्टिकर्ता और संरक्षक न हो तो सब कुछ थम जाएगा। इस पर विचार करें और अवश्य करें। परमेश्वर अय्यूब से यही कहना चाहता है कि वह अपनी महानता को प्रकट कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय उसके एक और दो पद में लिखा है, फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। अय्यूब, क्या तू परमेश्वर को शिक्षा दे सकता है? सच तो यह है कि अय्यूब, तर्क तूने जो भी कहा वह अज्ञान की बातें थी। वह परमेश्वर को निर्देश देने का प्रयास कर रहा था जिसके योग्य वह है ही नहीं। वह अज्ञान था और अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। अब परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न करता है। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय उसके 3-5 पद में हम पढ़ते हैं, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, दो बार भी कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। यहां पर देखिए, अय्यूब कहता है, मुझे चुप रहना है, अब मैं समझ रहा हूं कि मैं व्यर्थ की बातें कर रहा था। क्या यह वही मनुष्य है जो कह रहा था कि कुछ भी हो वह अपनी सत्य निष्ठा बनाए रखेगा? क्या यह वही मनुष्य है जो कह रहा था कि वह एक धर्मी जन है, इसलिए परमेश्वर के साथ ही कुछ अनुचित है कि उसने अय्यूब को दंड दिया है? अब यही पुरुष कहता है कि वह व्यर्थ की बात कर रहा था। किसी ने कहा है कि यदि हम अपने आप को वैसा देख पाए जैसा परमेश्वर हमें देखता है तो हम स्वयं से घृणा करने लगेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तब हम स्वीकार करेंगे कि हम निकम्मे और कमजोर लोग हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के इस प्रगटीकरण का अय्यूब पर 3 गुना प्रभाव पड़ा। परमेश्वर के साथ उसका संबंध, स्वयं के साथ संबंध, और अपने मित्रों के साथ उसके संबंध पर। उसने ज्ञान से रहित बातें की, उसके वचन निर्बुद्धि थे। अब वह सोच रहा था कि वह मुंह बंद रखता तो अच्छा होता। वह चुप हो जाता है और मुंह पर हाथ रख लेता है। हम अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय उसके 6-8 पद में देखते हैं, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? यहां पर देखिए, आंधी अपनी चरम सीमा पर है और परमेश्वर आंधी में से कहता है, क्या तू मुझे अन्यायी कहता है? परमेश्वर अन्यायी हो ही नहीं सकता। अंत में अय्यूब इस बात को स्वीकार करता है 42 अध्याय के 2 पद में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब को अभी भी बहुत दूर चलना है। मेरे मित्रों, अय्यूब आगे बढ़ रहा है। वह स्वयं को नहीं जानता था, परंतु अब वह इतना तो जान गया कि वह पतित है। मनुष्य को कब यह बोध होता है कि वह बहुत दूर निकल गया है? यह परमेश्वर के निकट आने में अय्यूब का पहला कदम है। परमेश्वर फिर सृष्टि द्वारा अय्यूब से कहता है, अय्यूब देख, चारों ओर देख, बहुत सी बातें हैं जो तू नहीं जानता है। तू मुझे और इस जगत के नैतिक प्रबंध का न्याय कैसे करने चला था? मेरे प्रियो, आज भी लोग गंदेपन की बातें करते हैं। मैंने विश्वासियों के मुंह से परमेश्वर के बारे में भी मूर्खता की बातें सुनी है। मेरे मित्रों, हमें अत्यधिक सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं। हमारे शब्द वचन के संदर्भ तक ही सीमित रहें। अय्यूब की अज्ञानपूर्ण बातों से प्रकट है कि वह परमेश्वर को नहीं जानता था। जब परमेश्वर से उसका साक्षात्कार हुआ, तब वह और भी प्रश्न पूछता है। आइए हम पढ़ें अय्यूब के पुस्तक 41 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर की बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, या उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? अय्यूब, तू इस लिव्यातान के विषय में क्या जानता है? आज व्हेल के अध्ययन में बहुत समय एवं धन निवेश किया जा रहा है, उनके विषय जानकारी ग्रहण की जा रही है। हम अय्यूब के युग से आज बहुत दूर निकल आए हैं, परंतु इन भीमकाय समुद्री जंतुओं के विषय में बहुत कम जान पाए हैं। जी हाँ, हम डायनासोर के बारे में क्या जानते हैं? एक बार एक गाइड पर्यटकों को संग्रहालय का भ्रमण करवा रहा था। जब वह डायनासोर के कंकालों के पास पहुंचा, तब उसने कहा, यह डायनासोर 20,00,006 साल पुराना है। तब किसी ने कहा, एक मिनट, 20,00,000 वर्ष तो ठीक है, परंतु यह 6 वर्ष और कहां से आ गए? गाइड ने कहा, जब मैं यहां पहली बार आया था, तब यह डायनासोर 20,00,000 वर्ष पुराना था। मुझे यहाँ काम करते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, अतः यह डायनासोर 20,00,006 वर्ष का है। मेरे मित्रों, मैं फिर पूछता हूँ, आप डायनासोर के बारे में क्या जानते हैं? आप किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से प्रश्न पूछें, तो वह यही कहेगा कि उसने अभी सिद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। वह स्पष्ट कहेगा कि अभी वह सीख रहा है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर का न्याय करने की स्थिति में कदापि नहीं है? परमेश्वर ने अय्यूब से वर्षों पूर्व इतिहास के आरंभ में यही कहा था। आइए अब हम देखेंगे अय्यूब का पश्चाताप। अय्यूब पर इस साक्षात्कार का प्रभाव को हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मेरे प्रियो, क्या आपका परमेश्वर ऐसा है? क्या वह कुछ भी कर सकता है? एक पुरानी कहावत है, क्या परमेश्वर इतनी बड़ी चट्टान बना सकता है जिसे वह उठा ना पाए? इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर मूर्खता नहीं करता। वह हर काम अपने गुणों के आधार पर करता है। वह स्वयं के संबंध में सच्चा है। अतः आप परमेश्वर को काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं जो वह अपने गुण के कारण कर ना पाए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, आप उसे करने की स्थिति में नहीं हैं। परमेश्वर आपका आज्ञाकारी सेवक नहीं है। परमेश्वर किसी भी फंदे में नहीं कूदेगा कि आप उसे पकड़ लें। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा है, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। अय्यूब स्वीकार करता है कि वह उन बातों की चर्चा कर रहा था जो उनके बारे में वह स्वयं भी कुछ नहीं जानता था। मुझे स्मरण है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए गया हुआ था तो हम पूरी रात अध्ययन करके एकत्र होते और आपस में पूछते कि किस विषय पर हम वाद विवाद करें। मैं कहता था, हम उस विषय पर परिचर्चा करें जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा वाद विवाद का विषय आकाश की सीमा हो तो आप उसके विषय जितना चाहे उतना विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अय्यूब भी उन विषयों पर विचार व्यक्त कर रहा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। वह ज्ञान के संबंध में विचार व्यक्त कर रहा था। हम अय्यूब 42 अध्याय उसके 4-6 पद में आगे पढ़ते हैं। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, अब अय्यूब को परमेश्वर की समझ प्राप्त हो गई थी। अब वह परमेश्वर की किसी काम पर उंगली नहीं उठाएगा, वह केवल विश्वास करेगा। अब परमेश्वर के साथ नए संबंध में था। सबसे पहले अय्यूब ने स्वयं के वास्तविक रूप को देखा और अपने ही आप से नए संबंध में आ गया। उसने अपनी पतित अवस्था देखी और स्वयं से घृणा करने लगा। अब वह स्वयं को परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में देखता है। वह राख और धूल में पश्चाताप करता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर सच्चे पश्चाताप के क्रमवार चरण है। यह विश्वास का पश्चाताप है। सबसे पहले आपको स्वयं को पतित अवस्था में देखना है। दूसरा, आपको स्वयं से घृणा करना है। आपने शायद चिड़ियों को जंगल में चुगते हुए देखा होगा। जब आप स्वयं पर भरोसा रखना और अपने पुराने मनुष्यत्व के पार्थिव देह पर निर्भर करना छोड़कर जीवित परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो वह सच्चा पश्चाताप है। यह कैसी अद्भुत और गुणवंत बात है। मेरे मित्र, अय्यूब परमेश्वर की प्रभुता को समझ पाता है। वह अपने पाप को स्वीकार करके पश्चाताप करता है। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। अंत में अय्यूब समझ जाता है कि परमेश्वर ने उसे कष्ट इसलिए दिए कि वह पश्चाताप करे। वह परमेश्वर की ज्योति में स्वयं को देखता है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 1:6-7 पद में यूहन्ना द्वारा सुनते हैं, जहां पर यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यह सचमुच में यह वचन मेरे और आपके लिए है। कई बार हम परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लोगों के बीच में हम कहते हैं कि मेरा और परमेश्वर का संबंध अच्छा है, लेकिन हम उसके अनुसार उस ज्योति में नहीं चलते हैं। हम कुछ छुपे हुए एजेंडाओं को लेकर के चलते हैं, योजनाओं को लेकर के चलते हैं, जिसे हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र और कलीसिया के लोग नहीं जानते। क्या आज आप इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं? वचन में लिखा है कि यदि हम उसके साथ में ज्योति में नहीं चलते हैं तो हम अंधकार में हैं। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अय्यूब अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। आइए हम देखें उपसंहार को। अंत में हम देखेंगे कि अय्यूब अपने मित्रों के साथ नए संबंध में आ जाता है। आइए पढ़ें अय्यूब के पुस्तक 42:7-9 पद में। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास लाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य वर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपाज, शूही बिल्दत और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। अब वह अपने मित्रों से विवाद करने और कलह करने की अपेक्षा उनके लिए प्रार्थना करता है, वह उनके लिए बलिदान चढ़ाता है। मेरे मित्रों, हमें भी धर्म पर विवाद नहीं करना चाहिए और न ही आपस में झगड़ा करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ एक दूसरे को संभालो और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अतः हम देखते हैं कि अय्यूब अपने साथ, अपने मित्रों के साथ और परमेश्वर के नए संबंध में आ जाता है। जो संबंध मित्रों के साथ टूट रहा था वह फिर से नई रीति से जुड़ जाता है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीषें कैसे दी? मानव स्रोतों के द्वारा। हम अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। मेरे प्रियो, वह इसी प्रकार आरंभ करता है। उसके मित्रों ने उसे नए आरंभ में सहायता की, और मेरा विश्वास करें कि अय्यूब एक सफल व्यापारी था। परमेश्वर ने उसे उसकी पूर्व संपदा का 2 गुना लौटा दिया। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए, उसका पशुधन 2 गुना हो गया था, और लिखा है कि उसके पास 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अब कोई कहेगा, परमेश्वर ने संतान तो उसे 2 गुना नहीं दी? उसने दी। अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां जो मर गए थे वे मरणोपरांत जीवित थे, वे उसके बच्चों में ही गिने जाएंगे। वह आज भी उन सब के साथ है। मेरे मित्र, हम अपने मृतक परिजनों को खो नहीं देते हैं, वे वहां पर हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का किरेनहपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। यदि आप अपनी आने वाली पुत्री के लिए एक नाम सोच रहे हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप उसका नाम यमीमा या कसिया या किरेनहपुक रखें, तो बहुत अच्छा होगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसके अंतिम पद 16 और 17। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धा अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। उसने अपनी चार पीढ़ियां देखी। इसका अर्थ है कि वह पितरों के युग का था। तो उसकी मृत्यु कब हुई? अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। मेरे मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसके साथ साथ अय्यूब की पुस्तक का भी समापन होता है। लेकिन मैं इस बात को भली भांति समझ गया हूँ और जानता हूँ कि आपने प्रत्येक ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अय्यूब की पुस्तकों से अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। हमने इस बात को सीख लिया है कि अय्यूब परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहा था और अंततः परमेश्वर उसके समीप आया और उसने इस बात को समझ लिया और पश्चाताप किया। आज मुझे और आपको भी समझने की आवश्यकता है कि हम अपने पापों को, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने में मान लें। अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयत्न न करें कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ भी पाप नहीं किया है। इस बात को जब हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, तब वह हमें क्षमा करता है। हम पश्चाताप करते हैं तो वह हमें क्षमा करता है और दो गुना आशीष प्रदान करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप उन आशीषों को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आइए आज हम सब भी अय्यूब के समान अपने जीवन को प्रभु की निकटता में समर्पित कर दें और आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर पिता आपको भी बहुत ऐसे आशीष देंगे और आप सबकी सहायता करेंगे। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करें कि आप अपने जीवन में प्रभु को निकटता से जान पाएं।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है।
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है।